பர்யந்தாளம் நமோ சித்தாளம் நமோ ஆயரியாளம் நமோ வஜ்ஜாயாளம் நமோ லோயி சவ்வசாஹுடம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம். இஷ்டோபதேச கிரந்த விராஜமான ஹே. ஆதா கண்டா இசி பர் ஸ்வாத்யாய கரெங்கே. குருதேவ் ஸ்ரீ நே ஆஜ் கே பிரவச்சன் மே 30 நம்பர் கி காதா சந்த் பிராரம்ப மே லியா தா. சப் புத்கல் கோ மோஹசி போக போக கர் தியாக் மே ஜ்ஞானி கர்த்தா நஹீ உஸ் உச்சிஷ்ட மே ராக். பஹுத் அச்சா விஷய ஹே. कि जगत में अनंत जीव राशि ठसा ठस भरी है, जिधर देखो जीव ही जीव है दुनिया में। इतनी जीव है कि अकेले एक निगोद शरीर में इतनी जीव है कि तीन काल में वो मोक्ष नहीं जाएंगे। उसमें जगत की जीव सिर्फ मोह से 30 नंबर गाथा में जगत में जो कुछ पर पदार्थ दिखाई देता है उसको उसने अनंत बार भोगा अज्ञानी ने, ये कहने में आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परावर्तन किए, एक एक पुद्गल को अनंत अनंत बार भोगा, फिर भी मिला कुछ नहीं। सच पूछा जाए तो अपने राग को ही भोगा, अपनी तृष्णा को भोगा। विचार करो एकदम स्वच्छ मन से, मैं इस कुर्ते को भोगता हूं क्या? कोई व्यक्ति जिस भवन में रहता है उस भवन को भोगता है क्या? दाल रोटी व्यक्ति खाता है उस दाल रोटी को भोगता है क्या? सत्य पूछा जाए तो भोगता नहीं है, भोगने का भाव करता है। उस भोगने के भाव को ही आचार्य यहां कहते हैं कि इसने एक एक पुद्गल को अनंत अनंत बार भोगा। इसलिए ज्ञानी उच्छिष्ट भोगी नहीं होते, उनको पर को देखकर उत्साह नहीं होता। जिस धन को हम धन कहते हैं वो धन आज मिट्टी हो गया, लोक में नजर आ रहा है। जब सरकार निर्णय ले तो धन मिट्टी होता है लौकिक, और जब सरकार फेल हो जाए तो बैंक भी मिट्टी हो जाती है। इस भरोसे में मत रहना, इतिहास इस बात का गवाह है। युद्ध का काल अर्थशास्त्र भी पढ़ा है हमने, युद्ध के काल में, विशिष्ट भूकंप के काल में, विशिष्ट आपदा के काल में बाह्य धन काम नहीं आता। सत्य तो यह है उसके अंतर का धन काम में आता है। एक भूधरदास जी हुए हैं, उन्होंने तो जगत से ये प्रार्थना की है, हे जगतवासियों तुम्हें यदि इस देह का नाश करके भी संतोष मिलता हो तो इस देह को तुम छेद दो, मेरे पास जो दिखाई देता है उसे तुम लूट लो, तुम्हें जो करना है सो करो, यहां तक कि शरीर के सहस्र खंड करने हो तो वो भी करो। लेकिन आपसे जगतवासियों एक निवेदन है कि तुम मुझसे कुछ बोलो मत। क्यों? क्योंकि मनुष्य साधक के लिए सबसे बड़ा बाधक बनता है बात करके, मुझे मेरे अंदर रहने दो। इसलिए ज्ञानी को बाह्य चीज कौवे की विष्ठा जैसी नजर आती है। इसलिए मैं ज्ञानी करता नहीं, उस उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं उल्टी को, संस्कृत में बोलते हैं छर्दी, भोगी हुई चीज एक कुत्ता बमन कर दे और दोबारा उसको चाटे तो वो दृश्य कोई सज्जन देख नहीं सकता। उसी तरह वो तो नहीं देख सकता, लेकिन हम अपने विषय में विचार करें तो अनादि से हमने यही किया है। एक परमाणु ऐसा नहीं छोड़ा लोक में जिसका भक्षण नहीं किया हो, एक ऐसी मां नहीं बची जिसके गर्भ में यह जीव नहीं गया हो। अष्टपाहुड़ में 5-6 गाथाएं लगातार आती हैं कि एक एक मां को इतनी इतनी बार रुलाया कि एक एक मां का, एक एक भव का, एक एक आंसू भी एकत्र करें तो समुद्र के समुद्र भर जाएं। बहुत गहरी चर्चा है, जगत से भय लगे, थकावट लगे, सच पूछा जाए तो हम भव से थके नहीं हैं। थक गए होती तो यहां विश्राम लगता, यहां विश्राम नहीं लगता, बाहर भागते हैं। इसका मतलब इसमें हमको शाश्वत विश्राम नजर नहीं आता। मैं भी चर्चा थोड़ा सा 31वीं गाथा पे करेंगे, 15-20 मिनट। कर्म कर्म हितकार है, जीव जीव हितकार, निज प्रभाव बल देखकर को ना स्वार्थ करतार। जगत में 6 द्रव्य हैं, अनंतानंत द्रव्य हैं, हर द्रव्य अपने अंदर नृत्य कर रहा है। अब दार्शनिक बन जाओ सर्वज्ञ की तरह, फिर विश्व का हर दृश्य रोमांचकारी लगेगा, कहीं कोई घटना सुखद या दुखद नजर नहीं आएगी। एक एक चीज को देखना सीखो। कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है। इसका अर्थ क्या बताते हैं गुरुदेव श्री? यह द्रव्य कर्म की चर्चा है कि जब आत्मा स्वयं को भूल जाता है तो कर्म कर्म को खींचता है। लोक में एक मैटर साइंस कहलाती है, पुद्गल विज्ञान, आपने देखा होगा, धन धन को खींचता है, कचरा कचरे को खींचता है, सिद्ध सिद्ध को खींचते हैं, सोना सोने को खींचता है, पानी पानी को खींचता है, कर्म कर्म को खींचता है, जीव जीव को खींचता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी कहां से निकलता है? हिमालय से। आवश्यकता कहां है? राजस्थान में। गिरता कहां है? सागर में। क्या जरूरत है सागर में गिरने की? कि पानी अपनी सुरक्षा चाहता है, यदि पानी अन्यत्र जाए तो वो नाश को प्राप्त हो जाए। आप हिंदुस्तान में एक कोने में कचरा डाल दीजिए, शाम तक वहां कचरे का ढेर हो जाएगा, कचरा कचरे को खींचता है, सोना सोने को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। सम्यक दृष्टि को जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो सिद्ध समान अपने सिद्धत्व का अनुभव करता है, तो सिद्ध भगवान फिर उसको ऊर्ध्व सिद्ध सिला पर खींचते हैं कि तुम जगत में रहने के योग्य नहीं हो। कर्म कर्म को खींचता है। प्रश्न ये है कि कर्म बलवान है या जीव बलवान है? क्योंकि जगत में 6 द्रव्य नजर आते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, तो इसमें से बलवान कौन है? कि बलवान अपनी नजर में छहों द्रव्य हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर वीर्य गुण हैं और उसकी पर्याय निरंतर परिवर्तित होती है। पर परमार्थता देखा जाए तो चार द्रव्यों में तो बलवान या अबलवान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चार द्रव्य में प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश और काल, बची जीव और पुद्गल। तो जीव और पुद्गल में कौन बलवान है? बोलो, पुद्गल नहीं है। यदि जीव बलवान हो तो 6 महीने 8 समय में 6008 जीव मोक्ष क्यों नहीं चले जाती, 608 ही क्यों जाती हैं? अपनी यहां गाथाकार ने दोनों तरह से वर्णन किया। यदि जीव अपने आप को विस्मृत कर देता है तो कर्म बलवान हो जाता है, और यदि अपने आप अपना लक्ष्य करता है, अपने आप को पहचान लेता है, तो वो जीव स्वयं बलवान हो जाता है। यदि स्वभाव से देखें तो जीव अनंत बलवान है, अनंत बल है जीव के अंदर। इतिहास और पुराण इस बात के गवाह हैं कि कर्म तो स्वयमेव जड़ है, उसे तो ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं बलवान हूं। उसको कहां ज्ञान है कि मैं बलवान हूं? उससे तो न ये ज्ञान है कि मैं निर्बल हूं, और ना उसे ये पता है कि मैं बलवान हूं। परमार्थता देखें तो जीव अनंत बल का धनी है, पर प्रश्न ये है कि उस अनंत बल का क्या अर्थ है? फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर यदि 2000 का नोट पड़ा है तो उसको उठाना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? बोलो, उसको उठाना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? एक ने उठाया, वो तो चोर है, चोरी को कोई पुरुषार्थ कैसे कह सकता है? लेकिन जिसने नहीं उठाया वो अपनी इतिहास 10 वर्ष तक लोगों को कहता है, मैं किसी का पैसा नहीं उठाता। तो ये उसकी जो सोच है, ये भी पुरुषार्थ कहां से हो सकती है? सत्य तो ये है, बस मैं मेरे अंदर रहूं, ये जीव का अनंत पुरुषार्थ है, और जीव उस पुरुषार्थ को पहचानता नहीं है। परमार्थता देखें तो जगत में निज प्रभाव बल देखकर को न स्वार्थ करतार, अपने प्रभाव और बल को देखकर जगत में कौन जीव ऐसा है कि जो अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता? कर ही लेना चाहिए, आत्मा में अनंत बल है, अनंत पुरुषार्थ है। अकेला एक जीव आत्मा यदि अपने बल को पहचाने तो पूरा विश्व उसके मुट्ठी में आ जाए। दूसरे पर शासन करना ये बल नहीं है, दूसरे को अपने अधिकार में रखना ये बल नहीं है, दूसरे को दबाना ये बल नहीं है, जगत की वस्तुओं पर अतिक्रमण करना ये बल नहीं है। आप जरा विचार करो, हमें लगता है कि देखो विश्व में सब गड़बड़ घोटाला हो गया है, कुछ नहीं हुआ, सब बहुत सुंदर है। मान लीजिए 1 किलो सोना है, वो आपके पास ना रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो धरती पर ना, धरती की चीज नष्ट कब हुई है? तुम उसके मालिक कैसे बन गए? चेतन चेतन का मालिक होगा या चेतन जड़ का मालिक होगा? केवल आधा घंटा विचार करना तो आपका मस्तिष्क इतना ठंडा हो जाएगा कि जो हम कर्म चेतना की आग में जल रहे हैं, वो सारी कर्म चेतना जलकर भस्म हो जाएगी। वो तो सच देखा जाए तो वस्तु की मालिक वस्तु है, मैं उसका मालिक कहा हूं? इस दीवार ने कब कहा मुझसे कि मैं आपकी मालिक हूं? इस शरीर ने कब कहा मुझसे कि मैं आपका मालिक हूं? हम ही तो कहते हैं कि ये मेरा है। आत्मा में अनंत बल है, और जो उस बल को पहचानता है तो फिर जीव अपना हित करता है। एक लौकिक एग्जाम्पल है, उसे आप ग्रंथ में खोजने की कोशिश मत करना, लेकिन कुछ ग्रंथ मिश्रित है, कुछ मेरी चिंतन के द्वारा मिश्रित है, पर समझने की कोशिश करना। 1000 चींटी, चींटी होती है ना, 1000 चींटी में जितना बल होता है उतना बल एक भौंरे में होता है। किसमें? भौंरे में, काले रंग का भौंरा होता है। और 100 भौरों में जितना बल होता है उतना बल, 100 भौरों में उतना बल एक चूहे में होता है। 100 चूहे में जितना बल होता है उतना बल एक बिल्ली में होता है। 100 बिल्ली में जितना बल हो उतना बल एक कुत्ते में होता है। 10 कुत्ते में जितना बल हो उतना बल एक गाय में होता है। 10 गाय में जितना बल हो उतना बल एक बैल में होता है। 10 बैल में जितना बल हो उतना बल एक सांड में होता है। 10 सांड में जितना बल हो उतना बल 2 ऊंट में होता है। 2 ऊंट में जितना बल हो उतना बल एक घोड़े में होता है। 100 घोड़ों में जितना बल हो उतना बल एक शेर में होता है। 10 शेर में जितना बल हो उतना बल एक अष्टापद में होता है। 10 अष्टापद में जितना बल हो उतना बल एक नाहर में होता है। 10 नाहर में जितना बल हो, 100 नाहर में जितना बल हो उससे भी ज्यादा बल एक अर्धचक्री में होता है। 1000 अर्धचक्री में जितना बल हो उतना बल एक चक्री में होता है। 1000 चक्री में जितना बल हो उतना बल एक व्यंतर में होता है। 1000 व्यंतर में जितना बल हो उतना बल एक भवनवासी देव में होता है। 1000 भवनवासी देव में जितना बल हो उतना बल एक ज्योतिष देव में होता है। 1000 ज्योतिष देव में जितना बल हो उससे भी असंख्यात गुणा बल सची इंद्राणी में होता है। और 40 नील सची इंद्राणी में जितना बल हो उतना बल एक सौधर्म इंद्र में होता है। सौधर्म इंद्र में जितना बल हो उससे भी अधिक बल एक 16वें स्वर्ग के देव में होता है। 1000 16वें स्वर्ग के देव में जितना बल हो उससे भी अधिक बल एक सर्वार्थ सिद्धि के देव में बल होता है। 1000 सर्वार्थ सिद्धि के देव में जितना बल हो उतना बल एक सामान्य एक रिद्धिधारी मुनिराज में होता है। 1000 रिद्धिधारी मुनिराज में जितना बल हो उतना बल एक सामान्य केवली में होता है। 1000 सामान्य केवली में जितना बल हो उतना बल तीर्थंकर के एक रोम में होता है। जब एक रोम में इतना बल तो सारे रोम में कितना बल, जब सारे रोम में इतना बल तो पूरे शरीर का कितना बल, जब पूरे शरीर का इतना बल तो शरीर का बल जिस अनंत वीर्य की पर्याय के कारण टिका है उस अनंत वीर्य की पर्याय का कितना बल, जब अनंत वीर्य की पर्याय का इतना बल तो जो अनंत वीर्य की पर्याय केवल ज्ञान पर्याय के कारण टिकी है उस केवल ज्ञान पर्याय का कितना बल, जब केवल ज्ञान पर्याय का इतना बल तो समस्त पर्यायों का कितना बल, जब समस्त पर्यायों का इतना बल तो समस्त गुणों का कितना बल, और जब समस्त गुणों का इतना बल तो अनंत गुणों को पिए बैठा चैतन्य सम्राट भगवान आत्मा उसका कितना बल। ये कोई इसकी बात नहीं है, ये बात है अंदर को पहचानने की। इसमें गुरुदेव जी ने कई जगह लिखा कि हम पर में तो उत्साह व्यक्त करते हैं, पर में तो हमको उल्लास आता है, लेकिन अपने अंदर हमको उल्लास नहीं आता। ये जीव की नपुंसकता है। आज किसी के व्यक्ति के चेहरे पर विषाद छाया हुआ है, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता है, ये सब उदय जनित है। जो प्रसन्नता है वो आत्म जनित नहीं है, जो विषाद है वो वैराग्य नहीं है। सत्य अनंत पुरुषार्थी तुम्हें तब कहलाऊं कि लौकिक प्रसन्नता मेरी आत्म प्रसन्नता बन जाए और जो मेरा शोक है वो वैराग्य में कन्वर्ट हो जाए। और वो तब संभव है कि जब जीव जीव का लक्ष्य करता है। लोक में ये नियम है कि कर्म कर्म का हित करता है, जीव जीव का हित करता है। गुरुदेव पुत्र जब पूरा स्वाध्याय करो तो एक एक लाइन से फिर किया जाता है। तो गुरुदेव कहते इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म बलवान है ये सिद्ध करना है, लेकिन जब जीव अपने आप को विस्मृत करता है तो कर्म बलवान कहा जाता है, हो जाता है, फिर कर्म कर्म को खींचता है। कर्णानुयोग की दृष्टि से भी देखो तो तीर्थंकरों के घर में जन्म लेने वाले तद्भव मोक्षगामी जीव जैसी छायिक संकिति जैसी अचारित्र वश ऐसे हो जाते हैं कि छह छह महीने तक अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिर रहे हैं। उस समय कर्म कर्म को खींच रहा है, भले ही वो अचारित्र संबंधी है, भले ही वो, लेकिन जिसको स्वरूप की साधना प्रकट हुई। बलभद्र राम जब मोह के बस थे तब पत्तों से, पेड़ से, पौधों से सीता के लिए पूछते थे, मेरी सीता कहाँ है, फूट फूट कर बालकों की तरह रोते थे। लेकिन जब उनका आत्मा बलवान हुआ माने आत्मा तो स्वभाव से बलवान है ही, जब आत्मा को पहचाना तो उसके अंदर समा गए, फिर वो सीता का जीव 16वें स्वर्ग से उतर कर आया और राम से कहता है हम तुम्हारी सीता आ गए, हमें पहचानो, चलो घर चलेंगे। लेकिन अब कौन घर जाए, किसके घर जाए, क्यों जाए, अब तो वो साधना में लीन हो गए। ध्यान देना, सत्य ये है, परमार्थता या कोई तुलना नहीं की जा रही, छयों द्रव्य वस्तु स्वरूप से बलवान है, एक परमाणु भी बलवान है, एक आत्मा भी बलवान है, लेकिन मैं मेरे लिए बनवा लूं वो उसके लिए बलवान है, उसकी बलवत्ता मेरे काम नहीं आएगी, मेरी बलवत्ता उसके काम नहीं आएगी। नारायण श्री कृष्ण अर्ध चक्रीय अनंत बल के धनी लौकिक दृष्टि से, लेकिन जब द्वारिका में आग लगी तो धू धू करके द्वारिका जली, सोने की द्वारिका, वो द्वारिका जिसका निर्माण इंद्र ने किया था, लेकिन माता पिता को जलते हुए कौन देख सकता है। उन्होंने माता पिता को बिछाया, रथ पर बैठाया, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो इस पर, लेकिन बैल आग से झुलस गए, वहीं खत्म हो गई। तो बलभद्र श्री कृष्ण दोनों उसमें जुट गए और अपने माता पिता को खींचने लगे। आकाशवाणी हुई, कोई नहीं बचेगा, सब जलकर भस्म हो जाएंगे। तो वो तो अर्धचक्री थे और एक बलभद्र थी, तुम्हें निकलना हो तो निकल जाओ, बल क्या काम आया, क्या काम आया। सत्य तो ये है, आज तक हमने अपने अनंत बल को बाहर में प्रयोग किया है, अनंत बल को देह के लक्ष्य में लगाया है, अनंत बल को जगत की चतुराई में लगाया है, अनंत बल को, अभिव्यक्ति का अनंत बल इधर से उधर लग रहा है, आदमी सेटिंग कर रहा है, खोका के खोका सरका रहा है, इधर में लगा है, लेकिन वो दिन भी वो लेट नहीं है, क्या कर लेंगे। मैं समझता हूं किसी पर 1 करोड़ रुपए रखे हैं, वो सुख देता है क्या, जरा कल्पना करो। अरे सत्य तो ये है, बहुत दूर वादियों में, पहाड़ों में कोई व्यक्ति एक झोपड़ी में रहता है, जो ये भी नहीं जानता बैंक किसको कहते हैं, जो ये भी नहीं जानता कि सरकार किसे कहते हैं, उससे कोई पूछे कि इस देश का राजा कौन है, भैया हमें नहीं पता इस देश का राजा कौन है, हमें तो ऐसा लगता है इस उन्मुक्त आकाश तले हम रहते हैं तो हम ही इस धरती के राजा हैं, जहां न किसी से लेना है, न कहीं किसी को कुछ देना है, न कोई चिंतन है, हमने किसी से लिया होगा तो हमें हिसाब देना पड़ेगा ना, जब हमने किसी से लिया नहीं तो हम हिसाब क्यों देंगे। इसलिए मैं तो प्रकृति प्रदत्त धनी हूं, प्रकृति प्रदत्त, कुदरत ने मुझे अनंत धनवान बनाया है, और अकेला धनवान नहीं बनाया, कुदरत ने मुझे अनंत बलवान बनाया है। विश्व का राजा धन छीन सकता है, तन छीन सकता है, प्रभुता छीन सकता है, लेकिन मेरे ज्ञान वैभव को छीन सकता नहीं है। जब समाप्त हो रहा है समय, यहां पर सिकंदर आए थे भारत में, पूरी दुनिया को जीतता हुआ सिकंदर, हिस्ट्री इस बात का गवाह है, कभी हिस्ट्री सुनो आप, आपको आश्चर्य होगी कि विश्व के नेताओं ने हमारी हिस्ट्री को छिपाया है, कायरों की भांति हमारी जैन समाज के गौरव को छिपाया है। हमारी जो कुतुब मीनार है उसमें 32 दिगंबर जैन मंदिर थे, उसको तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई कायरों की भांति। हमारी हिस्ट्री को छुपाया है, सत्य नहीं पता लोगों को। क्यों? क्योंकि सत्य पता पड़ जाए तो उससे उनका गौरव खंडित हो। आपको ये तक नहीं पता होगा शायद कि जब यहां पर सिकंदर आया था, सिकंदर ने अंतिम समय दिगंबर मुनिराज के चरणों में समाधि मरण लिया था। जिस चाणक्य की बात आप करते हैं, उस चाणक्य ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार की थी। पूरे विश्व का खून चूसता हुआ जब हिंदुस्तान में आया तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं विश्व की सारी चीजें अपनी रानी के लिए गिफ्ट में लेके जाना चाहता हूं। मैंने सुना है हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान को तो खूब लूटा है, लेकिन कोई असली अच्छी चीज बताओ जो मैं मेरी रानी के लिए लेके जाऊं। उनका मंत्री कहता है, महाराज सोना चांदी तो आपने बहुत लूट लिया, लेकिन यहां की दो चीज हैं जिनको लूटना मुश्किल है। बोलो क्या? कि एक तो यहां के दिगंबर बीत रागी संत, जिनके तन पर धागा नहीं और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है, और एक यहां की नारियां जो पराये पुरुष से हाथ लगाने से पहले मर जाना पसंद करती हैं। तो तुम उनको लेकर कैसे जाओगे? ऐसा बोली, बात तो ये है, तो चलो दो चार मुनिराज लेके चलो। उस समय कल्याण मुनिराज का संघ यहां था, तो उनका मंत्री उनके पास गया, महाराज हमारे सम्राट ने आपको याद किया है। मुनिराज मूर्खों से वार्तालाप नहीं करते, वो तो स्वरूप के ध्यान में मस्त थे। बोले आपको माला माल कर देंगे, तुम जिन्हें कंगाल समझ रहे हो वो माला माले गणधर उनकी पूजन करते हैं, सौधर्म इंद्र के चरणों में अपना मस्तक मुकुट झुकाता है, जिन्हें तुम कंगाल समझ रहे हो। बोले जाओ अपने राजा से कहना, अपने सम्राट से कहना, हम पर अकेला एक जिनदेव का राज चलता है और किसी का शासन नहीं चलता। जाकर उसने कहा, सिकंदर फौज लेकर आ गया, लंगी नंगी तलवारें, और लज्जित हो गया, इनको तलवार दिखाने की क्या जरूरत है, तलवारें नीची रख ली। शोभा देता है क्या कोई सिंह चूहे पर आक्रमण करे, शोभा देता है क्या? उनसे बोला, तुम्हें हमारे देश चलना है? बोले नहीं, हम तो ये तीर्थंकरों की भूमि हमें पसंद है, हम तो इसी में रहेंगे। तो जबरदस्ती उनको ले जाने लगे और कहा कि वरना हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो कल्याण मुनि ने एक शब्द बोला उनसे, महाराज शरीर तो हम उसी दिन छोड़ चुके थे जिस दिन हमने ये घर छोड़ा था, तुम इस शरीर को मिटाने की बात करते हो, हम शरीर तो पहले ही छोड़ चुके, हमारा वास तो आत्मा है, हम तो हमारे आत्मा में निवास करते हैं। उन्हें जबरदस्ती लेकर गई कल्याण मुनि को पानी के जहाज में, निमित्त ज्ञान से उन्होंने बताया कि तुम अपने देश में पहुंचने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम आत्मा का हित कर लो। धन्य है दिगंबर मुनिराज, जिन पर उपसर्ग होने पर भी उपसर्ग कर्ता के प्रति उनको समाधि मरण का उपदेश दे रहे हैं। है किसी का ऐसा कलेजा कि जो तुम्हारे शरीर की सहस्र खंड करे तो भी तुम उसको ये बोलो कि तुम्हारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा? उनको ले गई, मुनिराज ने आहार पानी का परित्याग कर दिया। रास्ते में कल्याण मुनि सिकंदर की तबीयत बिगड़ी और ऐसी बिगड़ी कि उसे भास होने लगा अब तो देह छूटेगा, मुनिराज के चरणों में गिर गया। महाराज आपकी बात सत्य है, मुझ पापी को उपदेश दो, मैं आपको बांध कर लाया हूं, मुझको उपदेश दो। वो कल्याण मुनि ने उनको संसार शरीर भोगों से विरक्ति दिलाई सिकंदर को, और ऐसी स्त्री कहती है कि उस मुनिराज के उपदेश सुनते सुनते उस सिकंदर ने प्राण छोड़े। उस सिकंदर ने, स्त्री में नहीं मिलेगा ऐसा, पुस्तकें हमारे हस्तनापुर में छपी पड़ी है और अलमारियों में रखी है। बाद में चाणक्य ने भी दीक्षा ली। सत्य तो यह है जिसको हित भाषित हो गया उसको जगत राग का ढेर नजर आता है। उससे क्या राग, उससे क्या द्वेष। एक कैंसर का मरीज है, उसे आप रत्नों की पोशाक पहनाओ तो वो रोएगा, मैं घंटे दो घंटे का हूं, मुझे तुम क्या पहनाते हो, मेरा दर्द से मेरा बदन चूर चूर हुआ जा रहा है, ये मुझे क्या पहनाते हो, इन चलती फिरती लाशों में वैभव का क्या बोझ लादना, मेरा हित तो मेरे अंदर है। जिसको सत्य हित भाषित हो गया कर्म उसके यहां से विदाई ले लेता है, जिसको सत्य हित भाषित नहीं हुआ उसको कर्म कर्म खींचते हैं, वो समझता है कर्म ये अंधकार में है चलो इसको घेरो, तो फिर कर्म कर्म का हित करता है। और जब आत्मा को आत्मा का हित भाषित हो जाता है तो आत्मा आत्मा का हित करता है। हम सबको ऐसा पावन अवसर मिला है, काल भले ही कोई हो, परिस्थिति भले ही कोई हो, देश का राजा भले ही कोई हो, विश्व में आग लगे या विश्व आकाश में तैरे, हमको तो गुरुदेव श्री के निमित्त से तैरने की कला मिल गई है, आत्महित की कला मिल गई है, इसलिए हम तो आत्मा का हित करेंगे। और कर्म कर्म की जाने, हम हमारी जाने, इसी के साथ अभी की बात समाप्त होती है।